ओम शांति। तो बाबा बच्चों के तीन स्वरूप को देख रहे थे। सबसे पहला था संगम योगी ब्राह्मण। संगम योगी ब्राह्मण अर्थात मायाचित, संगम योगी ब्राह्मण अर्थात विजयी, ब्राह्मण अर्थात सदा मौज में रहने वाले, ब्राह्मण अर्थात ताज तख्त और तिलकधारी। आगे दूसरा स्वरूप है फरिश्ता। सभी को फरिश्ता बनना ही है ना, कि फरिश्ता बनना मुश्किल है, सहज है या मुश्किल है, या कभी मुश्किल कभी सहज? तो फरिश्ता स्वरूप की विशेषता सभी जानते भी हो कि फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। तो डबल लाइट है कि कभी बोझ उठाने को दिल करती और उठा लेते हो, वह उठाना नहीं चाहते हो लेकिन मजबूरी में उठा देते हैं, लेकिन माया क्या करती है, सिर पर टोकरी रख देती है। माया अपना आर्टिफिशियल टेम्पररी शक्ति ऐसी दिखाती है जो मजबूरी से भी बोझ उठाना न चाहते भी उठा लेते हैं, क्योंकि कमजोर होने के कारण कमजोर सदा पर अधीन होता है, पराधीन। तो माया भी अधीन बना देती है, अधिकारीपन भूल जाता है और अधीन बन जाते हो। उस समय भाषा क्या होती है अधीन बनने के बाद? चाहते नहीं थे पर हो गया, और क्या कर रहे हो?
चाहते नहीं थे कि हो
गया। और कौन सी भाषा रहती है?
सोचा नहीं था,
चाहते नहीं थे, इच्छा नहीं थी, मेरा कोई दोष नहीं है। ड्रामा में था उस समय भाषा क्या होती है? चाहते तो नहीं है लेकिन पता नहीं --/--। हर बात में पता नहीं कहते रहेंगे। पता नहीं क्यों होता है ऐसा। अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र और अधीन अर्थात सदा परवश। तो परवश कभी भी मौज के जीवन में नहीं रह सकते, ब्राह्मण अर्थात मौज की जीवन। अगर कोई भी समय मौज की बजाय मूंझते हो ये क्या, ये कैसे, क्या यही होता है, तो ये मौज नहीं, ये मूंझने की जीवन है। अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते तो फिर से ये पाठ पहला याद करो कि मैं कौन हूं, सिर्फ आत्मा नहीं लेकिन कौन सी आत्मा हूं। सोचो तो सही। क्या कल था ना एक वाक्य, कौन पढ़ाता है, पढ़ते कौन है, सोचो तो सही। तो लेकिन कौन सी आत्मा हूं, इसके कितने जवाब आएंगे, लंबी लिस्ट है ना। रोज की मुरली में क्या करो सिमन भाई, रोज की मुरली में क्या ढूंढो?
मैं कौन।
रोज की मुरली में मैं कौन का भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो। तो दूसरा स्वरूप क्या है? फरिश्ता। सभी को फरिश्ता बनना ही है ना, कि फरिश्ता बनना मुश्किल है, सहज है या मुश्किल है, या कभी मुश्किल कभी सहज? तो फरिश्ता स्वरूप की विशेषता सभी जानते भी हो कि फरिश्ता अर्थात
डबल लाइट।
तो डबल लाइट है कि कभी बोझ उठाने को दिल करती है और उठा लेते हो, वह उठाने नहीं चाहते हो लेकिन माया सिर पर टोकरी रखती थी। माया अपना आर्टिफिशियल टेम्पररी शक्ति ऐसी दिखाती है जो मजबूरी से भी बोझ उठाना ना चाहते भी उठा लेते हैं, क्योंकि कमजोर होने के कारण कमजोर सदा पर अधीन रहता है, तो माया भी अधीन बना लेती है। अधिकारीपन भूल जाता है और अधीन बन जाते हैं। उस समय भाषा क्या होती है, चाहते नहीं थे लेकिन पता नहीं, हर बात में पता नहीं कहते रहेंगे। किस बात में पता नहीं कहते रहेंगे, अच्छा बोलना नहीं चाहते थे, पता नहीं अपने आप निकल गया। एक और, उदासी क्यों आती है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्यों उदासी रहती, इच्छा नहीं लगती, इच्छा नहीं रहती कुछ भी, ऐसा लगता है सो जाओ बस।
वो अच्छा लगता है
क्यों ये कमजोरी है पता नहीं, कमजोरी है या नहीं है वो भी समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं है क्या है, कुछ वो शब्द ही नहीं है इसको बताने के लिए, बड़ा ही अपरिभाष्य है। और अमृत वेले पता नहीं उठने की दिल ही नहीं करती, उठो तो लगता है क्या करना है छोड़ो बॉडी कुछ भी नहीं किया, बॉडी पेन दर्द होते रहता है शरीर में कमजोरी लगती है शरीर में, थकान रहती है, जवान नौजवान लोग आते हैं वो कहते हैं पीठ दर्द और पता नहीं बुखार लगता है, हमेशा ही लगता है, कब से कई सालों से, 5-6 साल हो गए बुखार जैसा। अमृत में तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, मुरली जाते हैं पर रस नहीं, ना मात्र जाना बैठना सुनना परंतु रस नहीं, सेवा में जा तो रहे परंतु पता नहीं कुछ मजा नहीं आता है, सेवा कर ली और बस, संतुष्ट नहीं होते लोग से पता नहीं पता नहीं क्या करे, पता नहीं कैसे ज्ञान चिंतन करे, चिंतन करना तो चाहते हैं परंतु पता नहीं होता ही नहीं है। अच्छा याद तो रखना चाहते पता नहीं याद ही नहीं रहता है कुछ भी, मेरा नसीब ही ऐसा है और पता नहीं मैं, हाँ मेहनत तो बहुत की सेवा में पर पता नहीं क्यों सफलता नहीं मिलती, पता नहीं लोग मेरे ही पीछे क्यों पड़े रहते हैं, मुझे क्यों कुछ बोलते रहते हैं, कोसते रहते हैं, मैं ही क्यों, मेरे साथ सारे हिसाब किताब मुझे ही है क्या, सारी बीमारियां मुझे या नहीं है, पता नहीं है ऐसा क्यों, सब बीमारियां मुझे ही, एक अभी एक बीमारी से निकलने की दूसरी, दूसरी से निकलने की तीसरी, पता नहीं ऐसे क्यों होता है। कोर्स तो इतने लोगों का कराया पर पता नहीं ये लोग कहाँ चले जाते कोर्स होने के बाद कितनों का कोर्स कराया पर पता नहीं आते ही नहीं बाद में, पता नहीं इनकी बुद्धि में क्या है, समझते ही नहीं, पता नहीं इनका क्या करे, पता नहीं आगे क्या होगा, हमारा आगे क्या होगा। और पता नहीं सुधा माता पता नहीं क्या बोलना है पता नहीं नींद ही नहीं आती क्या करे, पता नहीं नींद बहुत आती है, इतनी नींद क्यों आती है, इतनी नींद आती है कि डॉक्टर साहब अभी अगर आप बोलो सो जाओ तो तुरंत सो जाएंगे इतनी नींद, दिन रात नींद ही नींद, नाश्ता किया नींद, दोपहर में फिर नींद, रात में तुरंत नींद, नींद का प्रकोप भयंकर, बाढ़ आ गई नींद हाँ ये एक कैटेगरी, दूसरी नींद ही नहीं आती है, पता नहीं क्यों नहीं आती, कोई टेंशन कुछ भी नहीं,
कारोबार भी उतना नहीं।
हाँ, कुछ भी कारोबार नहीं, कोई सेवा नहीं ज्यादा, परंतु नींद ही नहीं आती।
मैं एक बजे घूमता ही था।
नींद का भी बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, स्वप्न ऐसे ऐसे आते हैं, पता नहीं क्या क्या आते हैं, इतने स्वप्न आते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं ये। हम तो कभी सोचते भी नहीं वो चीज, परंतु स्वप्न आते ही रहते, आते ही रहते हैं। इतने स्वप्न आते हैं, क्या बताऊं, बहुत स्वप्न आते रहते।
हाँ,
जन्म जन्म का माल भरा है। नहीं, वो एक आधे बार ठीक है, ये रोज की बात है, रोज ही। हाँ, हाँ बस वहीं से खुल के निकल के बाहर आते हैं। और पता नहीं,
पता नहीं आंखें चंचल क्यों होता है,
आंखें क्यों चंचल होती है, पता नहीं। देह को जानते तो है क्या है, फिर भी आकर्ष, पता नहीं भूल क्यों जाते हैं, याद नहीं रहता है कुछ। वही तो पता नहीं। तो बाबा कह रहे हैं, जब अधीन हो जाते हैं तब प्रश्न उठते हैं, पता नहीं। पता नहीं का कारण, पता नहीं अगर हो है तो वो मौज की जीवन नहीं है, मूंझने की जीवन है। अगर पता नहीं है जीवन में, तो जरूर कहीं ना कहीं सूक्ष्म में श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो है, उसको ढूंढना है, खोज करनी है उसकी, उस कारण की। अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का पालन करना, ये है व्रत। कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है, पता नहीं अहंकार क्यों आ जाता है बार बार, विशेषताओं का, खूबियों का। चाहते तो हम भी नहीं है, पर पता नहीं कैसे निकल गया। तो बाबा कहते हैं, अधिकारीपन भूल जाता है और अधीन बन जाते हैं। उस समय भाषा क्या होती है, चाहते तो नहीं थे लेकिन पता नहीं, हर बात में पता नहीं कहते रहेंगे हर बात में। अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र, और अधीन अर्थात सदा परवश। जरूर कुछ ना कुछ श्रीमत की का उल्लंघन हो रहा है, जरूर किसी ना किसी व्यक्ति वैभव वस्तु साधन के अधीन है, जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई आकर्षण है, जरूर किसी ना किसी व्यक्ति में वस्तु में कोई ना कोई चीज में लगाव है, जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी अभिलाषा है, आकांक्षा, ये है अभिलाषा, एक्सपेक्टेशन है दूसरे से, आकांक्षा है किसी ना किसी से, या बहुत ज्यादा एम्बिशियस है कि मेरा नाम हो जाए, मुझे ये मिल जाए, वो प्राप्ति हो जाए, और वो नहीं होता है तो फिर उदासी। तो ये सब है परवश, आत्मा की निशानी। परवश कभी भी मौज के जीवन में नहीं रह सकते, कोई ना कोई गुप्त इच्छा है, कुछ ना कुछ कामना अंदर ही अंदर है। ब्राह्मण अर्थात मौज के जीवन, अगर कोई भी समय मौज की बजाय मूंझते हो, कोई भी समय किसी भी कारण से, ये क्या है, ये कैसा है, क्या यही होता है, ये क्या है, ये पता नहीं चल रहा है, ये हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये तो होना नहीं चाहिए फिर भी यहां हो रहा है, क्या यही होता है यहां पर भी, यहां पर भी ऐसा होता है। तो ये मौज नहीं है, ये मूंझने की जीवन है। अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो, तो फिर से ये पाठ, पहला याद करो कि मैं कौन, सिर्फ आत्मा नहीं लेकिन कौन सी आत्मा, इसके कितने जवाब आएंगे। उस दिन निकाले थे ना हमने सामान की लिस्ट, 1.5 घंटा बैठकर, कितनी बड़ी, कितनी सारी थी, 700, 800, 1000। इसके कितने जवाब आएंगे, लंबी लिस्ट है ना, रोज की मुरली में मैं कौन का भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो। तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, लाइट अर्थात हल्का। कोई भी चीज भारी अगर कर रही है, परिस्थिति, व्यक्ति, हल्कापन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, लेकिन सारे दिन में किस किस में हल्के, स्वभाव में, संस्कार में, संबंध में, संपर्क में लाइट रहे, वैसे ठीक है। लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं तो फरिश्ता कहेंगे टाइट नेचर, तो उसको भी फरिश्ता तो नहीं कहेंगे ना। लाइटनेस, हर चीज में लाइटनेस, बोल में, कर्म में, संकल्प में, स्वभाव में, संबंध संपर्क में, सबसे ज्यादा लाइटनेस कम हो जाती है संबंध संपर्क, दूसरों के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां लाइटनेस कम हो जाती है। वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं तो फरिश्ता कहेंगे। और हल्के की निशानी है सदा उड़ता रहेगा। हल्की चीज सभी को प्यारी लगती है। कोई बोझ वाली चीज आपको देवे तो पसंद करेंगे, और हल्की बढ़िया चीज हो तो पसंद करेंगे ना। तो जो स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में हल्का होगा उसकी निशानी है वे सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे। क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव संस्कार व संबंध संपर्क वाले, मेजॉरिटी 95% के दिल पसंद जरूर हो, इतनी रिजल्ट जरूर होनी चाहिए 95% के दिल पसंद, और 5% के, 5% जिन्होंने कसम खा रखी है इनको पसंद नहीं करेंगे, जिन्होंने कसम खा रखा है कि इनसे संतुष्ट नहीं होगी, जो करना है कर लो। सर्टिफिकेट नहीं देंगे आपको, जो करना है करो। तो 5% अभी भी मार्जिन दे रहे हैं, अंत तक नहीं है लेकिन अभी दे रहे हैं। 95% सर्व के दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट, और वो हल्कापन बोल कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। कैसे अनुभव हो? बोल से, कर्म से, वृत्ति से। और किसी से टकराव हो गया तो मीठा भाई, मीठी बहन, सम्मान से, आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि से, आत्मिक मान देना सबको, रूहानी स्नेह की वर्षा करके दुश्मन को भी दोस्त बताना। कोई पत्थर फेंके तो रत्न दे दो, क्योंकि तुम रत्नाकर बाप के बच्चे हो। कोई मान दे या न दे, कोई माने या न माने, मीठा भाई, मीठा बहन, मीठी बहन कहना। अच्छा, मन से ऐसे नहीं, मैं तो हल्का हूँ लेकिन, ऐसे नहीं, मैं तो हल्का हूँ लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते, पहचानते ही नहीं। अगर नहीं पहचानते, ये कहते हैं ना, इन लोगों को पता ही नहीं मैं कौन हूँ। अगर नहीं पहचानते तो आप अपने विल पावर से उन्हों को क्या कर दो, अपनी पहचान दो। देखा, ऊंची बात कही है। आपके कर्म वृत्ति उनको परिवर्तन करे, इसमें सिर्फ परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। और फरिश्ता अर्थात, ये था एक परिभाषा फरिश्ता की, लाइट, हल्कापन, कोई भारीपन नहीं किसी की, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति की वजह से। और फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं। ये सभी को याद है ना कि अभी भी वो रहा हुआ है, पुरानी देह से लगाव है क्या? देह के संबंध से हल्के हो गए हो कि नहीं? काका, चाचा, मामा, उनसे न्यारे हो गए ना कि अभी भी है? न्यारे और प्यारे हैं, प्यारे हैं लेकिन न्यारे होकर के प्यारे बनते हैं, ये गलती हो जाती है, ये मिक्स हो जाता है। या तो न्यारे हो जाना सहज लगता है या तो प्यारे होना सहज लगता है, लेकिन ये देह के संबंध काका चाचा मामा ये फिर भी सहज है। सहज है या थोड़ा थोड़ा स्वप्न में संकल्प में आ जाता है। जब ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है तो कितनी बार याद कर रहे बाबा इन तीनों को, चाचा काका मामा याद आते हैं। बाप दादा देखते हैं कि परिवर्तन के समय कई आत्माओं को ब्राह्मण परिवार की बजाय नहीं सॉरी परिस्थिति के समय ब्राह्मण परिवार की बजाय कौन याद आता है, लौकिक संबंध जल्दी स्मृति में आता है। जरूर होगा कोई बैठे सभा में परिस्थिति किनारे के बजाय सहारा अनुभव कराती है। जब मरजीवा बन गए तो अगले जन्म के संबंधी काका चाचा माँ बाप याद है क्या, स्वप्न में भी आते हैं क्या? तो संबंध जन्म बदल गया ना, तो फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, यही परिभाषा बोलते हो ना, सिर्फ फिर समय पर कहां से निकल आते हैं, टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाता है क्या? मरे हुए से जिंदा हो जाते हो, फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, सब नया। बाप दादा ने देखा है कि फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है उसका कारण एक पहली सीढ़ी है देह भान को छोड़ना, और दूसरी सीढ़ी जो और भी सूक्ष्म है वो है देह अभिमान को छोड़ना। देह भान और देह अभिमान, देह भान फिर भी कॉमन चीज है, लेकिन जितने ज्ञानी तो आत्मा योगी तो आत्मा बनते हैं उतना देह अभिमान रुकावट डालता है, और देह अभिमान अनेक प्रकार का होता है। जैसे एक है देह भान मतलब देह है ये स्मरण, दूसरा है देह अभिमान वो क्या है, अपने बुद्धि का अभिमान, मेरी बुद्धि अच्छी है
टैलेंट,
ये तो थोड़े कम बुद्धिमान है इनको समझ में नहीं आएगा, स्वयं को ज्यादा बुद्धिमान समझना। एक अपने श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान, हम सुसंस्कारित है, कल्चर्ड सोफिस्टिकेटेड मैनर्स जिनको पता है, इनको तो पता ही नहीं कहाँ क्या करना है, इनको मैनर्स ही नहीं पता, इनके संस्कार इतने अच्छे नहीं है,
उच्च कुल के नहीं है,
ये उच्च कुल के नहीं है, कुलीन कुल के नहीं, अपने श्रेष्ठ अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान, तेरा स्वभाव बहुत अच्छा मिलन सर, अपनी विशेषताओं का अभिमान, अपनी कोई विशेष कला का अभिमान, अपनी विशेष कला का अभिमान, अपनी सेवा की सफलता का अभिमान, हमने की सेवा इसके लिए सफल हुआ, सफलता हुई, सफलता के लिए कल चार बातें बोली थी, कौन सी राजकुमार भाई, सेवा की सफलता के लिए वरदान में हद की कामना ना हो, निष्काम हो एक, दूसरा त्याग तपस्या का स्वरूप दो, तीसरा निस्वार्थ, दूसरा वो तीसरा चौथा और पहला मधुर बोल का स्वरूप हो, जब ये चार चीजें होगी तो सेवा में सफलता होगी, अगर कामनाएं बहुत सारी है तो सफलता नहीं होगी सेवाओं में, कामनाओं हद की कामनाओं से परे, निष्काम निस्वार्थ सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप और त्याग तपस्या का स्वरूप, अगर सेवाओं में त्याग और तपस्या नहीं है तो वहां पर भी पता नहीं क्यों सफलता नहीं होती है, मेहनत तो बहुत करते हैं तो सफलता नहीं होती, तो देखो कितनी सारी चीजें बताई है। देह अभिमान में क्या क्या आता है, बुद्धि का अभिमान, श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान, अच्छे स्वभाव का अभिमान, विशेषताओं का अभिमान, कला का अभिमान, सेवा की सफलता का अभिमान, ये सूक्ष्म अभिमान देह भान से भी बहुत महीन है। अभिमान का दरवाजा तो जानते हो ना क्या है, मैंपन, मेरापन, ये है अभिमान के दरवाजे। तो फरिश्ता का अर्थ है ये नहीं कि सिर्फ देह भान व देह के आकर्षण से परे होना व देह के स्थूल संबंध से परे होना, केवल इतनी फरिश्ता की परिभाषा नहीं है। फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा होना। और अभिमान की निशानी है जहां अभिमान होता है वहां पर अपमान की फीलिंग भी बहुत जल्दी आती है। जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी होती है, क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजे खुले हुए हैं। तो फरिश्ता का यथार्थ स्वरूप है देह भान और देह के संबंध से, देह अभिमान से न्यारा। अगर कोई गुण है, कोई शक्ति है, तो दाता को क्यों भूल जाते हो? और दूसरी बात, इससे सहज न्यारे होने का रास्ता व विधि बहुत सहज है। एक अक्षर है, एक अक्षर में इतनी ताकत है जो देह अभिमान और देह भान सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वो एक अक्षर कौन सा है? निमित्त भाव। करण करावन हार बाप करा रहा है। करण करावन हार शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देता है। एक शब्द याद करना तो सहज है ना, और सारी पॉइंट भूल भी जाओ, भूलना तो नहीं है, लेकिन अगर भूल भी जाओ तो एक शब्द तो याद कर सकते हो, करण करावन हार बाबा है। तो देखो फरिश्ता जीवन का अनुभव कितना सहज अनुभव होता है। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना किस आधार से? सदा करण करावन हार की स्मृति से समर्थ बन फरिश्ते बने। फॉलो फादर है ना, या फॉलो माया है। कभी माया भी मदर फादर बन जाती है। बड़ी अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है। माया भी बहुत अच्छी मात पिता बनकर पालना कराती है, लेकिन वो सब है धोखे की प्राप्ति। पहले प्राप्ति फिर धोखा, माया की पालना। परखने की शक्ति तो है ना, माया है या बाप है, इसको समय पर परखना। धोखा खाकर परखना यह कोई समझदारी नहीं हुई। धोखा खाकर तो सब समझ जाते हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा पहले यह परख कर स्वयं को बचा लेता है। तो समझा फरिश्ता किसको कहा जाता है? यह है फरिश्ता। मंजू बहन कुछ सुनाएंगे? अच्छा कल सुनाएंगे। हाँ, एक एक कविता हमने लिखी थी फरिश्ता पर बहुत पहले 2007 में, बाबा के कमरे में बैठकर एक कविता है फरिश्ता पर, इंग्लिश में है, मैं उसको हिंदी में बताता हूँ। डू एंजल स्पीक, ये लिखी थी 2007 में, 13 मई 2007, 3:57 PM। बाबा के कमरे में बैठ गए। द एंजल स्पीक बट विथ द साउंडलेस वर्ड्स। फरिश्ते जो है वो बात करते हैं, परंतु वो जो शब्द है उनका कोई आवाज नहीं है, साउंडलेस, निःशब्द। द एंजल्स टॉक बट विथ द वॉइसलेस स्पीच। उनका जो भाषण है उसमें आवाज नहीं है, परंतु भाषण करते हैं। द एंजल्स कन्वर्स बट विथ साइलेंस एज देयर मीडिया। फरिश्ता जो है वो बातचीत तो करते हैं, परंतु साइलेंस माध्यम है। द कार्ब ऑफ लाइट, लाइट का कार्ब सराउंड्स देम एंड द लाइट स्पीक्स। द लाइट मूव्स आउट, फ्लोट्स अराउंड एंड फिल्स द वर्ल्ड। वो जो प्रकाश है वो संसार को भरता है। With the melody of silent, with the song of silence, with the song of deep detachment, with the language of serenity, which the worldlings can't hear, nor touch, nor feel. उनका जो प्रकाश है वो जैसे कि एक मधुर आवाज है, melody of silence, song of silence है, वो song of deep detachment, वैराग, अनासक्ति का वो जैसे गीत है। लैंग्वेज ऑफ सेरेनिटी, शांति का जो भाषा है जैसे उनकी, जो कि संसार के लोग वर्ल्डलिंग्स कांट हियर, ना तो सुनाई देती है उनको जो देहभान में रहते हैं, ऐसे लोगों को फरिश्तों की आवाज सुनाई नहीं देती। वो ना तो टच कर सकते, ना तो फील कर सकते। एंजल्स आर द बीइंग्स ऑफ लाइट, परफेक्ट एंड कंप्लीट। दे आर द मैसेंजर्स ऑफ सुप्रीम लाइट, ओबीडियंट एंड फेथफुल। दे रश टू हेल्प, टू रेस्क्यू एंड वैनिश इन टू द सटल वर्ल्ड। वो भागते हैं, मदद करते हैं और गुम हो जाते हैं। लिविंग नो नेम बिहाइंड, कोई नाम, कोई नो ट्रेस टू बी सॉट, कुछ भी छोड़ते नहीं। किसने किया, बस मदद करते, मदद की और गायब। क्रिश्चियनिटी में एंजल्स को छोटे बच्चे के रूप में दिखाया है और जिनको पंख है, देखा होगा वो चित्र छोटे बच्चों का और पंख। दे लिव इन द सुपर कॉन्शियस स्टेज, अतीन्द्रिय अवस्था में रहते हैं वो। इन द वर्ल्ड बट नॉट इन द वर्ल्ड, संसार में परंतु संसार में नहीं। डे एंड नाइट दे कीप ऑन मूविंग, दिन रात वो इधर उधर जाते रहते। बिटवीन द सटल वर्ल्ड एंड द अर्थली वर्ल्ड, उनका लक्ष्य, देयर एम इज वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। दे लिव इन द अनलिमिटेड, दे सीक नो नेम नॉर एनी ग्लोरी ऑफ दिस इफीमेरल वर्ल्ड, इस संसार की ना उन्हें नाम चाहिए ना मान चाहिए, वो अपना कार्य दिन रात करते रहते हैं। दे आर द बींग्स ऑफ प्यूरिटी, वो जैसे प्यूरिटी के जीव है। द मड ऑफ बॉडी टच देम नॉट, ये शरीर का जो कीचड़ है उन्हें स्पर्श नहीं करता। द डर्ट ऑफ फाइव एलिमेंट्स नेवर स्टिक टू देम, ये जो गंदगी है, डर्ट है पांच तत्वों का, वो उनको कभी स्टिक चिपकता नहीं है। दे आर अलूफ एंड अवे, वो सबसे अलग रहते हैं। दे फ्लोट, जैसे तैरते हैं, एज एयर ही पैसेंजर है वो, हवा की पैसेंजर। ट्रेवलर्स ऑफ द स्काई, ट्रेवलर्स ऑफ द स्काई। द टूरिस्ट ऑफ द स्पेस, स्पेस के टूरिस्ट है। द वॉयजर्स ऑफ द स्टारी नाइट, इन साइलेंस दे लिव, वो मौन में जीते हैं। इन साइलेंस दे मूव, इन साइलेंस दे हैव देयर बीइंग, एंड इन दैट साइलेंस देयर वर्डलेस टॉक पेनेट्रेट्स द वर्ल्ड विद अनअर्थली पीस। देयर स्पीचलेस वाइब्रेशन परमिएट्स द अर्थ विद डिवाइन सोलेस। द एंजल्स टॉक विद दोज, किन से बात करते हैं फरिश्ते, विद दोज हु इन साइलेंस फ्लोट अबोव द वर्ल्ड, फ्लोट अबोव टू द वर्ल्ड ऑफ साइलेंस, जो खुद आवाज से परे रहते हैं और फरिश्तों की दुनिया में रहते फरिश्ते उनसे बात करते हैं। एंड हुज हार्ट्स फॉलो द एंजल्स डिक्टेट्स, द एंजल्स टॉक ओनली विद द एंजल्स, और हु आर स्ट्राइविंग टू बी एंजल्स। द साइलेंस इज नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ स्पीच, उनका जो मौन है वो केवल भाषा का अभाव नहीं है, परंतु एक ऐसा साइलेंस, बट अ साइलेंस विद स्पीच, द साउंडलेस स्पीच, जिसमें आवाज नहीं है। मतलब भाव है कि फरिश्ते जो है इस संसार से परे रहते हैं, आवाज की दुनिया से परे रहते हैं, अनासक्त रहते हैं, आते हैं, मदद करते हैं और गुम हो जाते हैं। ये फरिश्ते की परिभाषा है। और बीइंग्स ऑफ प्यूरिटी है, देह का कीचड़ उन्हें स्पर्श नहीं करता है, तत्वों की आकर्षण उन्हें नहीं है, कोई इच्छा नहीं है अपना नाम हो, इतने गुप्त है वो, और उनकी भाषा जो है मौन की भाषा है। ऊपर घूमते हैं, टूरिस्ट ऑफ द स्पेस, ट्रेवलर ऑफ द स्काई, वॉयजर ऑफ द स्टारी नाइट, इस तरह के। तो फरिश्ता एक्चुअली आत्माभिमानी स्थिति है। देहभान अर्थात मनुष्य, आत्माभिमान अर्थात फरिश्ता, वो हर स्थिति जो हमको देहभान से ऊपर रखती है वो फरिश्ता स्थिति है। उसमें फिर वो ज्ञान का गहन चिंतन की अवस्था जो है वो भी एक रीति से फरिश्ता स्थिति है, क्योंकि जिस जिस चीज से हम देहभान से ऊपर है वो फरिश्ता अवस्था है। तो फरिश्ता बनना अर्थात डबल लाइट, फरिश्ता बनना अर्थात आज की मूल्य से कोई भी मूंज की अवस्था नहीं है। फरिश्ता बनना किसी पर भी अधीनता नहीं है, परवश नहीं है, पता नहीं, ऐसे शब्द नहीं आएंगे, क्या, क्यों, कैसे, ऐसा भी होता है क्या, इन प्रश्नों से परे रहने वाले, वो सारी ही अवस्था फरिश्ते की अवस्था है। तो हमको इस अवस्था को प्राप्त करना है। जो कुछ हो रहा है, संबंध संपर्क, इसमें भी लाइट, कोई भी चीज ऐसी ना करे कि जो हमको भारी कर दे, क्योंकि लक्ष्य हमारा आध्यात्मिक उन्नति है। फिर उसके लिए वहां पर झुकना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, सिक सिक झुक झुक मरमर। अगर वहां सामना किया किसी का, वहां तो विजय हो जाएगी, दूसरों को हरा देंगे, सामना कर दिया और किसी को हरा दिया, पर योग खत्म हो जाएगा, फरिश्ते स्थिति नहीं रहेगी, नुकसान इधर होगा। किसी से झगड़ा किया, सामना किया, किसी को विरोध किया, बहुत ज्यादा कमी देखी, कमी का वर्णन किया, वहां तो ठीक रहेगा, परंतु योग खत्म होगा। झगड़ा किया, योग खत्म होगा, किसी को कुछ बोला तो योग खत्म होगा। बोलना भी वो तो सबसे बहुत बड़ी कला है, मतलब किसी को शिक्षा देना ये सबसे बड़ा काम है। तो लक्ष्य जो है उसके लिए जो कुछ करना है वो करना पड़ेगा। फिर ये दिनचर्या में बहुत बार झुकना पड़ेगा, हार माननी पड़ेगी, लोगों के सामने सामना किया तो ये खत्म। तो वही तो कह, संबंध संपर्क में हल्का, वो तो सन्यासी है, चुपचाप सबसे अलग हो जाओ, निकलो ही नहीं, किसी से संपर्क में नहीं आओ तो माया है ही नहीं, कमरे में बैठे रहो सुबह से भट्टी योग में, एकदम मौन में रहना, उसमें माया नहीं है। माया तो बोलते हुए, संबंध संपर्क में आते हुए, सेवा के फील्ड में उतर कर फिर माया है। वो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। मुझे नहीं पता, अच्छा सबसे हमारे पास एक सन्यासी आते हैं ओपीडी में, जो बिल्कुल बात नहीं करते, मौन है, कंटिन्यूस मौन। आते हैं ये संत सरोवर, आते हैं, तकलीफ क्या है, एक चीट दो, उस पे लिखते हैं, फिर वो लिखो, फिर वो पढ़ो, अच्छा ये है, फिर दवाई दो और जाते मौन। परंतु वो तो बहुत अच्छी चीज है, साइलेंस गोल्ड है, परंतु डायमंड, स्पीच तो सिल्वर है, साइलेंस गोल्ड है, तो डायमंड क्या है? कंट्रोल्ड स्पीच डायमंड है, मौन से भी ऊंची अवस्था है वो। मौन रहना तो बहुत आसान है, चुपचाप मौन रहो, झगड़े खत्म। पर वो सेवा भी तो करनी है, संपर्क में भी तो आना है, सब कुछ तो ज्ञान भी तो सुनाना है। कंट्रोल्ड स्पीच इज डायमंड, साइलेंस इज गोल्ड, बट कंट्रोल्ड स्पीच।
अच्छा, डॉक्टर भी मौन में रहेगा और पेशेंट भी मौन में रहेगा?
हाँ, वो तो मुश्किल हो जाएगा फिर तो। तो वैसा नहीं करना है।
तुमको क्या तकलीफ है? पेट में दवा।
तो बोलना तो है, परंतु सारी कसरत इसकी है, कंट्रोल्ड स्पीच, कितना बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कम कैसे बोलना, ना बोलना आसान है, खाना नहीं खाना तो बहुत आसान है, बिल्कुल फास्ट रख दो, 7 दिन अगर उपवास रखो तो 8 दिन, 8वें दिन खाने की इच्छा ही नहीं होगी, पर कम खाना, ये पुरुषार्थ है, कंट्रोल करके रखना, वो खाना, वो बड़ा पुरुषार्थ है, ना खाना तो बहुत आसान है, मौन रखना तो बहुत आसान है, पर वो लक्ष्य नहीं है, मध्यम मार्ग, बैलेंस, बैलेंस से ब्लेसिंग है, ना अति उच्चम ना अति नीचम। ओम शांति। अच्छा, संडे की मुरली, संडे कौन रिवाइज करेगा, मंडे से सैटरडे तक, वॉलंटियर?